वकुल हक मिर रब्बिकुम, और कह दीजिए कि हक मेरे रब की तरफ से है, तुम्हारे रब की तरफ से, सॉरी, तुम्हारे रब की तरफ से है। यानी ये बातें भी हक हैं, ये जो सारी बातें की गई हैं, जो असहाबे कहफ का किस्सा था वो भी हक है, वो भी ट्रूथ है। अब रब्बिकुम क्यों कहा गया? तुम्हारे रब की तरफ से, ये भी कहा जा सकता था मेरे रब की तरफ से, मेरे रब्बी, ताकि जो सुनने वाला है ना उसको रियलाइज कराया जाए कि ये तुम्हारे रब ने ही ये बताया है, ये तुम्हारे रब का कलाम है, ये उसने ये सारी बातें बताई हैं और उसने हक बताया। ये जो लोग कह रहे हैं यहूदी कुछ कहते थे, वो ईसाई कुछ कहते थे, इनकी बातें हक नहीं है, अल्लाह की बात हक है। अब ये तुम्हें बातें तो बता दी गई हैं, असहाबे कहफ का भी पूछा था वो भी बता दिया गया, वमन शाफल यो मैं वमन शाफल यो। अब जो तुम में से चाहे मान ले, जो चाहे ना मान ले, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भी मानोगे तो कोई इट्स ओके, ये नहीं मतलब है। मतलब अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बादशाहत में कोई फर्क नहीं आएगा। वो है भी ना हदीस कुदसी के तुम में सब जिन इंस सब अव्वल आखिर सब मर्द औरतें सब के दिल सबसे ज्यादा बेहतरीन के दिल की तरह हो जाए, यानी सबके दिल जैसे बेहतरीन बेस्ट तो कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की तरह हो जाए, तो अल्लाह ताला की बादशाहत में एक जर्रे बराबर भी नहीं फर्क आता। और सबके दिल सबसे बुरे की तरह के हो जाए, ब्लीस की तरह के, अल्लाह माफ करे सबके दिल हो जाए, तब भी अल्लाह ताला की बादशाहत में तो कोई फर्क नहीं आता। अपने ईमान का इतनी धाक जमाने की और एहसान जताने की जरूरत नहीं है, हम किसी पे एहसान नहीं करते, अपना भला करते हैं। जो नहीं फिर मानेगा, तुम्हारी चॉइस है, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को रास्ते दोनों दिखा दिए, हक भी वाजे कर दिया, फिर अब नहीं मानना तो ये भी तुम्हारी चॉइस है, अगर मान जाओगे तो ये भी तुम्हारी चॉइस है। लेकिन ये याद रखना कि जो फिर नहीं मानेगा ना, तो ऐसे जालिम है, ये लोग जालिम है, इन जालिमों के लिए हमने तैयार कर रखा है, आतदना तैयार हो चुका है, ये नहीं कि अभी करना है। बाज लोग कहते हैं अभी जन्नत जहन्नुम नहीं है, अभी वो तो कयामत के दिन अल्लाह बनाएगा, ये कुरान के अंदर है आतदना, माजी का जीका है, हमने तैयार किया हुआ है, तैयार कर ही भी है कि कैसी आग, अहा तभी सुरादिकुहा, घेर लेंगी उसकी कनाते, उसकी टेंट, उसका जो जैसे आप कहेंगे सराउंडिंग, उसकी जो उसकी उसकी वॉल्स जो हैं वो उसको घेर लेंगी, ऐसी आग होगी, यानी आग की दीवारें होंगी उसके इर्द गिर्द। बाज ने कहा कि सुरादे के गर्दन है कि जो जहन्नमियों को घेर लेगी कयामत के दिन, और वो चकलेगी उनको। बाज ने कहा धुआं है, लेकिन जो यहां से ज्यादा पता चलता है वो आग है, जो आग की दीवारें, और सोचें जब आग की दीवारें हों तो इंसान का एस्केप कहाँ से हो सकता है, वो कहाँ से निकले, कहाँ से भागे, उसके इर्द गिर्द कोई सीमेंट की दीवारें नहीं है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अस्तगफिरुल्लाह। वही यस्तगीसु युगाथु बिमा इनकल मुहलि यश्फिल वुजूह, और जब इंसान किसी भी गर्मी के अंदर होता है, तपिश उसको लगती है, तो सबसे पहले उसको पानी की तलब होती है कि वो पानी मांगता है, मुझे पानी दे दो। जब वो वहां पे पानी की फरियादें करेंगे, चीखेंगे, तड़पेंगे पानी के लिए, तो उनको आम पानी नहीं दिया जाएगा, वो पानी दिया जाएगा कल मोहल। मोहल कहते हैं ऐसी, जैसे यहाँ पे भी बताया गया तेल की तिलछट, यानी वो जो तेल नीचे रह जाता है ना, वो डार्क भी होता है, वो बेकार भी होता है, थिक भी होता है, और वो वाली तेल की तिलछट उसको दी जाएगी जिसका टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा। और ऐसा, इससे मुराद वो ये भी बताया गया कि ऐसा पिघला हुआ तांबा जो चेहरों को भून दे, और ये भी इसकी तफसीर में आता है कि जो पीप है, पस जो होती है वो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो चॉइस तो तुम्हारी है, लेकिन उसके बाद अंजाम देख लो कि अंजाम क्या है। ऐसा तेल की तिलछा जो यश विल वजू भून डाले चेहरों को, चेहरों जब वो इंसान उसको अपने मुंह के करीब लेकर आएगा उस प्याले को, तो सारे उसकी अल्लाह ताला माफ फरमाए, उसकी स्किन, उसका गोश्त पोश्त, उसका सब पिघल के मेल्ट होके उस पानी में गिर जाएगा। फिर भी वो उसको पिएगा तो उसका सारा जिस्म जो है अंदर से जल जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। और ये कोई बदतरीन सजा नहीं, इससे भी बदतरीन सजा ये है कि उनका कभी खात्मा ही नहीं होना, मौत नहीं आनी कि फिर मर ही जाए चोले इंसान इतनी स्वेयर पनिशमेंट के बाद, ऐसी चीज के बाद जिसमें उसका यानी चेहरा क्या हालत रही। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि उस पानी का टेम्परेचर क्या होगा जो चेहरे को पिघला दे, उसका टेम्परेचर क्या होगा। अल्लाह ताला हमें माफ कर देना या रब, अल्लाह हमें कुफर से महफूज रखना, शिर्क से महफूज रखना, हर अपनी नाफरमानी से महफूज रखना। तो ये पानी क्या पानी होगा कि जो ऐसा है, जो इनके सरों पे भी डाला जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी। तो शराब कितना बुरा पीने का की चीज है ये। आज यानी किसी को गर्मी लगे और उसको कोई गर्म पानी लाके नलके का पानी दे दे तो कहता है ये लेकर आए, पीना नहीं पसंद करता। उसको इसका मतलब यहां से पता चला कि सिर्फ वो उस पानी के करीब आने से उसका चेहरा जो भुन जाएगा वो इतना ही नहीं होगा, वो पिएगा भी। इसीलिए तो कहा गया ना बेशक शराब वो पिएगा, बिकॉज वो फोर्स्ड होगा पीने का ना, और कुछ नहीं है। वो कहेगा कुछ मुझे मिल जाए। साअत मुर्तफका, अल्लाह ताला माफ कर दे। कितनी बुरी रहने की जगह है, कितना बुरा ठिकाना है ये। अब ये जो लोग काफिर थे ना, वो मोमिनों को ऐसे देखते थे कि ये क्या चीज है और ये क्या है, इनका तो कोई स्टेटस नहीं। तो बताया जा रहा है कि ऐसे अंजाम होगा उन लोगों का जो कुफर करने वाले हैं। तुम इनको हकीर समझते हो, देखो कि ऐसे लोगों का क्या अंजाम होगा जो खुद शिर्क करने वाले हैं। तो खुद अपनी खैर मनाओ। और इससे पता चलता है कि इंसान ऐसा नहीं कि बस रोबोट है और वो उसकी कोई चॉइस ही नहीं है और जबरदस्ती उसको जो तकदीर में लिख दिया गया अब उसने तो वही करना है। नहीं, इंसान के पास चॉइस है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। हाँ, मगर ये कि अल्लाह ताला का भी फैसला होता है। और हम जो अहले सुन्नत हैं, हम यही कहते हैं कि इंसान की भी चॉइस अल्लाह ताला ने इंसान को भी दी है, और अल्लाह ताला भी फैसला करता है जो तकदीर में उसके लिए लिखा हुआ है पहले से। अल्लाह ताला जानता है इसने क्या फैसला करना। इन्नल्लज़ीना आमनू आमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और साले अमल किए। और अल्लाह ताला ने देखें कहीं पे भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि सिर्फ उनकी बात बता के और खत्म कर दी गई हो, बल्कि उन दूसरों की भी हमेशा बात बताई जाती है कि जो बुरा करेगा उसका अंजाम क्या है। और जो ईमान लेकर आता है तो उसके साथ क्या होगा, जो ईमान लाए और साले अमल करे। तो इन्ना ला नुदियो अजरा मन अहसना अमला, तो बेशक अल्लाह ताला जाया नहीं करता उन लोगों का अजर जो अच्छा अमल करने वाले हैं। इन्हें यह तसल्ली रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे नेक अमाल को कभी जाया नहीं करेगा। कभी कभी शैतान इंसान के जहन में डाल देता है ना कि पता नहीं इसका कुछ मिलना भी है कि नहीं, मैं ख्वामखा इतनी कुर्बानी देती जा रही हूँ, मैं ख्वामखा रात को उठती हूँ, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं सोई भी रहूँ। नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि छोटा सा भी जो अमल है ना, आप जरा सा सदका करें, जरा सा आप किसी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दें, कोई छोटे से भी इबादत का काम करें, आप कभी ये ना सोचें कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक-एक जर्रे को भी महफूज रखना, अल्लाह ताला एक एक जर्रे को भी उस दिन तोलेगा। तो जब एक जर्रे ने भी तुल जाना है, अल्लाह ने जाया कोई नहीं करना, तो उसकी भी वैल्यू होगी। तो साले हाथ में सारी किस्म की नेकियां आ जाती हैं, जिस नेकी का भी मौका मिल जाए अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा उस अमल को जो आसन है। आसन अमल क्या है? आसन अमल यानी वो अमल जो परफेक्शन के तरीके से किया गया हो, बेस्ट तरीके से किया गया हो। तो सिर्फ इसका मतलब साले अमल काफी नहीं है, बेस्ट तरीके से करना भी काफी है। मतलब क्या कि जैसे नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना एक अमले साले है, नेकी का काम है, मगर आसन अमल क्या है कि उस नमाज को भी आप अच्छे तरीके के साथ संवार के पढ़ें। कुरान पढ़ना है, नेक अमल है, लेकिन उस कुरान को भी जब समझ समझ के ठहर ठहर के गौर फिक्र करके पढ़ेंगे तो वो आसन अमल बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि सिर्फ नेक अमल नहीं, आसन अमल करने के लिए आगे आप बढ़ें, उसको करने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला ने देखिए कितनी श्योरिटी दी है ना, यहाँ पे अश्योरेंस कराई है, इन्ना इन्ना से स्टार्ट किया, इन्न लदीना, बेशक, ये श्योरिटी, फिर इन्ना, बेशक हम। ठीक है, तो बिल्कुल फिकर की इसमें किसी को जरूरत नहीं है। कि शैतान असल में ना क्या करता है, उस नेकी को ना छोटा हल्का इतना कर देता है कि इंसान कहता है कि क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है, वो इतना उसको माइन्यूट दिखाता है। तो जब इंसान उसको इतना बेकार सी छोटी सी चीज समझेगा तो फिर क्यों करेगा? तो अल्लाह जाया नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। उलाय कलाम जन्ना तो आदम, उलाय का जो है ना ये भी ताकीद है और लहूम भी ताकीद है। कितनी ताकीदें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि ऐसे ही लोग हैं जो साले अमल करते हैं, ब्यूटीफुली करते हैं उसको, क्योंकि आसन अमल का अजर भी इसके कितनी गुना बढ़ जाता है जब आप आसन अमल करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए जन्नत आदन है। आदन कौन सी होती है? हमेश की जन्नत, इटर्निटी, और ये एक जन्नत का नाम भी है। अल्लाह ताला ने उसकी सेटिंग बताई है कि तजरी मिन तहतिहिम अनहार, उनके नीचे से नहरें बहेंगी। तो तहत का माना मुफसरी ने ये भी किया कि मतलब है कि घरों के साथ साथ या रास्तों के साथ साथ उनके दरमियान में बहेंगी, क्योंकि ये नहरें गढ़ों में नहीं है जैसे दुनिया की नहरें होती हैं कि गढ़ा बना के उसके अंदर नहर, इस तरह से नहीं, ये जमीन के ऊपर चल रही होंगी। और मोमिन जहां चाहेगा उनको हुक्म देगा तो उधर वो टर्न कर जाएंगे। और कौन कौन सी नहरें हैं? चार किस्म की नहरें हैं जन्नत के अंदर, पानी की, दूध की, शहद की, शराब की। सुभान अल्लाह, युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, वो पहनाए जाएंगे उनमें कंगनों में से, यानी और भी जेवर होंगे लेकिन कंगनों में से, या फिर ये भी मतलब है कि मिन ज़हबिन, सोने से, और भी जगह पे आता है चांदी के भी होंगे, मोती और सोने के भी होंगे, यानी जुड़ाव जिनको कहते हैं। तो मिन तमीजिया, यानी इनमें से बाज ऐसे होंगे, एक तरह की ज्वेलरी की बात की कि सोने के कंगन होंगे और वो पहनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे दुनिया के अंदर लड़की को दुल्हन बनाया जाता है, वो खुद थोड़ी सजती है, कोई उसको मेकअप करता है, कोई जेवर पहनाता है, कोई खादमाएं होती हैं या जो भी ब्यूटिशियन या, लेकिन वहां पे खादमाएं होंगी जो उनको जेवर से सजाएंगी, ताज पहनाए जाएंगे, कंगन पहनाए जाएंगे, हार पहनाए जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या और तरह के जेवर होंगे, और मर्दों को भी और औरतों को भी, क्योंकि पहले जमाने के अंदर बादशाह कंगन पहना करते थे। अल्लाह अकबर। तो उनकी तो जिंदगी वहां पे बादशाहों की तरह होगी ना, तो वो उनको पहनाए जाएंगे। और फिर वयलबसूना सियाबन खुदर मिन सुंदुस व इस्तबरक, और पहनेंगे वो लिबास, अब ये नहीं कहा गया पहनाए जाएंगे, पहनेंगे वो लिबास सब्ज ग्रीन कलर के लिबास होंगे। तो क्या सिर्फ ग्रीन कलर के ही होंगे और कोई कलर नहीं होगा? नहीं, और भी कलर्स होंगे, लेकिन ग्रीन को एक हाईलाइट किया गया यहाँ पे। वो ग्रीन होंगे मिन सुंदुस व इस्तबरक, बारीक रेशम के और भारी, मैं मोटा नहीं कहूंगी इसलिए कि मोटे रेशम को बार बाज दफा हम समझते हैं कि पता नहीं, मोटे कपड़े को हम जरा इतना फाइन नहीं समझते ना, लेकिन इस्तबरक वो है जिसको हम कहते हैं ना भारी, भारी काम वाला कपड़ा होता है, राइट? तो हम तो अच्छी तरह इसको समझते हैं कि जब काम किसी कपड़े पर कर दिया जाता है बहुत हैवी हो जाता है वो। ठीक है, तो वो हैवी वाले भी होंगे और लाइट वाले भी होंगे, दोनों तरह के होंगे। बाज ने कहा कि इस्तबरक ऊपर पहनने का होगा, जैसे आप ऊपर कोई चीज डालते हैं, और जो नीचे का जो जिस्म के साथ है वो सुंदुस होगा, वो बारीक होगा, तो फाइन सिल्क होगी जो पहनने के कपड़े होंगे, वो फाइन सिल्क के होंगे। देखें आप, मर्दों के लिए दुनिया के अंदर सिल्क भी हराम है और सोना भी हराम है, कभी भी किसी मर्द को सोने की रिंग ना दें, क्योंकि आप उसको एक तरह से वो चीज गिफ्ट दे रहे हैं जो उसके लिए हराम है। ठीक है, तो शादियों पे इस पे कभी लोग दे देते हैं, तो कभी भी सोने की ना दे। उसके लिए सोना दुनिया में हराम है, और जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जिन्होंने दुनिया के अंदर इससे परहेज किया, अल्लाह ताला जन्नत में उनको सोने के कंगन पहनाएगा और सोने के जेवरात। इसी तरह आपको पता है कि सिल्क भी मर्द के लिए हराम है, तो जो प्योर सिल्क होती है तो वो भी दुनिया के अंदर हराम है, और वहां पे जाके अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पहनाएगा। इसी तरह शराब यहाँ पे हराम है लेकिन वहां पे शराब है। तो शायद हम ये सोचते हैं ना कि हमारे लिए कोई इतनी बड़ी इतनी अट्रैक्टिव चीज ना हो मर्दों के लिए आज के दौर में कि कंगन है, या लेकिन उस जमाने के उससे देखें तो ये बहुत बड़े सजने संवरने की। उस जमाने में तो बादशाह पहना करते थे, कैसर रोम और किसरा, और किसरा के कंगनों की बात बहुत आती है, हदीस में भी पता चलती है। तो मतलब वो एक बहुत ऑनर और एक बहुत बड़ी रॉयल्टी की बात समझी जाती थी। और कपड़ों से भी पहले ज्वेलरी की बात आई, हालांकि इंसान कपड़े पहले पहनता है और ज्वेलरी बाद में पहनता है। ये इसकी वजह ये है कि देखिए ज्वेलरी जो है ना वो सबसे कीमती होती है। कपड़ा कभी भी आप लॉकर में नहीं रखते, ज्वेलरी लॉकरों में रखी जाती है, इतनी कीमती। तो कीमती चीज की पहले बात की गई, तो इतने खूबसूरत कपड़े उनको पहनाए जाएंगे और ऐसे प्यारे जेवर, मुत्तकीन फीहा अलाराइक। अब सज धज तो गए, अब सजने के बाद क्या करें, फिर अपने तख्तों के ऊपर बैठे होंगे, तकिए लगाए हुए, नेम सवाब व हसनत मुर्तफका। वहां पे कहा था बेस शराब व सात मुर्तफका, यहाँ पे उसका ऑपोजिट है। कितना अच्छा बदला है जो अल्लाह ताला उनको देगा, और कितनी अच्छी रहने की जगह है वो, सुभान अल्लाह। और जरा सोचें वो औरतें जो कुरान पढ़ने से पहले देखें आईब्रोज बनाती थी, बाल खोल के जाती थी, ज्वेलरीज अपनी बेपर्दा आदमियों को सामने भी डिस्प्ले करती थी शादियों पे, इस पे फंक्शंस पे। और फिर कुरान पढ़ने के बाद जब हिदायत मिल गई तो अब अबाया स्काफ ये सब चीजें वो पुरानी छोड़ दी। तो अब यहां से आप देखें कि अल्लाह ताला कितना कदरदान है। आप अगर दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्मों पर आ जाते हैं और कोई भी कुर्बानी देते हैं, तो कोई आपकी चीज जाया नहीं जाएगी। जो औरतें इतनी कुर्बानी ऐसी देती हैं, ये नहीं कि उनके पास ज्वेलरी नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं पहनने को, या उनके बाल कोई खूबसूरत नहीं, वो भी एक से बढ़ के एक है, मगर सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, उसके हुक्मों के ऊपर चलने की खातिर अगर कोई इंसान कुर्बानी देता है तो उसका अजर बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारी कुर्बानियों और तुम्हारी ये जो भी तुम काम करोगे इसको कभी जाया नहीं करूंगा, कभी ना सोचेंगे कुछ से क्या फर्क पड़ता है। वहां पे इससे भी बेहतरीन लिबास है, इससे भी बेहतरीन जेवरात हैं जो मिलेंगे, थोड़ी सी बस सब्र की जरूरत है। ताशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती ना, जब किसी बाज लोग औरतों को बेपर्द देखा था तो फरमाया तुम दुनिया में मजे कर लो और हम हमारे मजे आखरत में, तो कभी बददिल ना हो। तो ये सोचें, जहन में लाएं कि देखें अराइक क्या है, तख्त हैं ऐसे वो जो मैंने आपको जैसे बताया, जैसे बेड होते हैं उनके ऊपर कैनोपीज लगी होती हैं जिसके ऊपर से पर्दे लटक रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। तो कितनी जबरदस्त जगह जहां पर कोई गम ना होगा, कोई परेशानी ना होगी, कितनी अच्छी रहने की जगह, जहां पे कंपनी किसकी होगी, सहाबा कराम की, सहाबियात की, हजरत खदीजा, हजरत मरियम, हजरत आयशा, हफ्जा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, कितने लोग होंगे। कंपनी भी प्यारे लोगों की, जगह भी खूबसूरत, आराम ही आराम। बाज लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं लोग क्या जन्नत ऐश करने की जगह है, अय्याशी की जगह, और उसको बुरा रंग देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ना, उसको पता है कि ये इंसान की ख्वाहिश है। अल्लाह ताला चाहता तो ये भी कह देता, अगर आपको इतना ही एतराज होता है ना जन्नत में जाना, जिन लोगों को इसका बड़ा एतराज है ना, तो उनको कह दिया जाए कि भाई यहाँ पे तो कुर्बानियां दो अल्लाह के हुक्मों पे चले। अल्लाह ताला ये कह सकता था कि हाँ तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें मैंने पैदा किया, तुम्हारे पर हक है मेरा, तो मैंने पैदा किया तो मेरा हुक्म मानो। और उसके बाद कोई रिवॉर्ड की बात नहीं है, जाहिर है मैंने पैदा किया, अब इसके ज्यादा क्या भाई तुम्हारे लिए रिवॉर्ड हो सकता है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बावजूद भी इंसान को कितना नवाजा, लिहाजा इस चीजों के ना जो लोग इसको बिलिटल करते हैं, हकीर करते हैं, हूरों की बातों की मजाक उड़ाएंगे, नहरों का मजाक उड़ाएंगे और ऐसी बातें करते हैं, तो अल्लाह ताला ने तो इंसान की जो एस्थेटिक सेंस है उसके मुताबिक, और नॉट ओनली कि ये नेमतें रखी हैं, इससे भी बढ़ के ऐशो आराम और इससे भी बढ़ के नेमत तो अल्लाह का दीदार है, उसका कुर्ब पाना है, और इससे भी अलावा क्या कुछ है, तो वो तो वाला दही ना मजीद, हमारे पास और भी है बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ इंसान को ये चीजें समझ आ सकती है ना, और इनकी हर एक बंदा ख्वाहिश करता है मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा पहनने को, मेरे पास फरागत हो, मैं इंजॉय कर सकूं चीजों को, क्यों जाते हैं लोग वेकेशन में, तो सारी चीजें ये बेकार है क्या? तो अल्लाह ताला ने उसी की बेस्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म वहां पे दे दी। अल्लाह हू अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا